अध्याय तीसरा। फ्लोरेंस शहर के केंद्र में सैंटा मेरिया डिल फियोर गिरजाघर एक भव्य रत्न के समान जड़ा है। 1367 में निर्मित इस गिरजाघर के विशाल गुंबद और ऐतिहासिक नक्काशियां हजारों पर्यटकों का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है। जहां उमड़ती भीड़ बाहर फोटो खींच रही थी, वहीं मैं चर्च के अंदर लकड़ी के एक बेंच पर अकेला बैठा था। यूरोप के अनेक गिरजाघरों में गया था, मुझे सदैव उनमें शांति मिली थी। यहां भी पवित्र वेदी के सामने खड़ा होकर मैं आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करने लगा। वहां कुछ और श्रद्धालु भी थे। धनवान और किसान सभी घुटनों के बल झुककर परमेश्वर से प्रार्थना और याचना कर रहे थे। मैं सोचने लगा कि वे क्या प्रार्थना कर रहे होंगे। क्या वे भगवान से अपने प्रयत्नों में सफलता की भिक्षा मांग रहे थे या दुखों से राहत की? क्या वे धन यश या अपने प्रतिद्वंद्वी से प्रतिशोध पाने की कामना कर रहे थे, या शायद वे निस्वार्थ प्रेम मांग रहे थे? जहां तक मेरी बात थी, मैं तो अपनी इस यात्रा के उद्देश्यों पर प्रश्न उठा रहा था। क्यों मैं नौकरी न करके समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को नजरअंदाज कर रहा हूं? क्या मैं किसी आंतरिक दुर्बलता के कारण उससे भागने का प्रयत्न कर रहा हूं? मैं अपने हृदय को टटोलने लगा। यात्रा के आरंभ में मैंने सोचा था कि मैं अपने संकोच और झिझक को त्याग कर सांसारिक सुखों का जमकर भोग करूंगा। मेरा विचार था कि ऐसा करने से मैं भगवान के और निकट आ जाऊंगा, किंतु अब मुझे लग रहा था कि यात्रा में घटित विभिन्न प्रकरण मेरे लक्ष्य से मेरा ध्यान भटका रहे थे। मेरा हृदय अब तक आध्यात्मिक अनुभव के लिए लालायित हो रहा था। ऊपर विशाल गुंबदों की ओर देखते हुए मैंने अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, मैं नहीं जानता कि आप वास्तव में कौन हैं, किंतु मुझे विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं। मैं आपकी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए उत्कंठित हूँ। अपनी तुच्छता का अनुभव करते हुए मैंने पत्थर की विशाल मेहराबों और ऊंची दीवारों को देखा। रंग बिरंगे कांच की खिड़कियों से छनकर आती हुई सूर्य की किरणें विशाल अष्टकोणीय छत को प्रकाशित करते हुए संतों की संगमरमरी मूर्तियों के ऊपर हल्की सी आभा बिखेर रही थी। मोमबत्तियों से घिरी पवित्र वेदी दैदीप्यमान हो रही थी। वहां ईसा मसीह की कांसे की आदमकद मूर्ति लकड़ी के क्रॉस पर लटकी थी। ये मूर्ति प्रेरणा दे रही थी कि जहां सच्चा प्रेम और करुणा होती है, वहां अपने प्रियजनों के लिए कष्ट सहने का दृढ़ संकल्प भी आता है। ऊपर गुंबद पर एक विशाल चित्र नरक की यातनाओं और स्वर्ग के भोगों को दर्शा रहा था और उसके शीर्ष पर भगवान फरिश्तों से घिरे थे। जब मैं पवित्र क्रॉस का अवलोकन कर रहा था, तब ईसा मसीह द्वारा कहा गया एक परिच्छेद, जिसे मैंने कंठस्थ किया था, मेरे हृदय में गूंज उठा। पहले भगवान के धाम की खोज करो और फिर बाकी सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जहां तुम्हारा खजाना है, वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। मेरा शरीर रोमांच से प्रकंपित हो गया, मेरे अंग सिहर उठे, गाल थरथराने लगे और मेरा सिर खाली और हल्का लगने लगा। लज्जा और दुख से अभिभूत हो मैं स्वयं को एक अनाथ की भांति अकेला और खोया हुआ महसूस करने लगा। ऐसा लग रहा था मानो मेरे आसपास खड़े श्रद्धालु पीछे स्थित मूर्तियों के समान ही जड़वत हो गए थे, और पीछे की मूर्तियां चमकने लगी मानो वे सांस ले रही हो। तभी बाइबल का एक अन्य परिच्छेद मैंने मन में कौन था, धन्य है स्वयं को तुच्छ समझने वाले लोग, क्योंकि भगवान का धाम उन्हीं का है। धन्य है वे विनम्र लोग, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर शासन करेंगे। इन शब्दों के साथ मुझे अब तक की गई अपनी गलतियों के लिए क्षमादान की वृष्टि का अनुभव हुआ। मुझे मानो एक नवजीवन मिल गया। निरवता को भेदती हुई पाइप ऑर्गन की ध्वनि ने हॉल को एक ऐसे गीत से भर दिया जो मेरे हृदय को भाव विभोर कर गुबंद की ऊंचाइयों से भी ऊपर ले गया। भगवान की उपस्थिति में स्वयं को अकेला और नग्न महसूस करते हुए मैं रोने लगा। मुझे मुक्ति का अनुभव होने लगा। मैं लंदन में जिस आंतरिक युद्ध से जूझ रहा था वह अब समाप्त हो गया था। उस अनिर्णय रूपी संगम में मैंने सदा सदा के लिए उस नदी का चुनाव किया जो मेरी आध्यात्मिक इच्छाओं की ओर बह रही थी। मैं जानता था अब मैं कभी वापस नहीं मुड़ूंगा। उस रात में अकेला जंगल में गया और जर्जर होती एक छोटी सी दीवार पर बैठ गया। वहां चांदनी रात में मैं अपनी हारमोनिका बजाने लगा। मैं इस वाद्य यंत्र के साथ अपनी गहन भावनाओं को बांटा करता था। एक प्रिय संगी के समान वो धैर्य के साथ मुझे सुनती और ऐसे गीत के साथ उसका उत्तर देती जो मेरे मन को अपने अंतःकरण की गहराइयों में शांति और ज्ञान खोजने के लिए प्रेरित कर देता। जब मैं ब्लूज बजाता तो मेरी उमंगें, विषाद और तृष्णाएं उन्मुक्त होकर व्यक्त होती। मैं रो रहा था अपने खोए हुए प्रेम के लिए, भगवान के लिए। घंटों बीत गए और मैं हारमोनिका बजाता रहा। अचानक मैं चौंक गया। एक युवती मेरे निकट खड़ी थी। झिझकते हुए वो आगे आई। मैं इरीन हूं, उसने कहा और बताया कि वो घंटों से मुझे सुन रही थी। तुम्हारे संगीत ने मुझे छू लिया है, क्या मैं तुम्हारे पास बैठकर इसे सुन सकती हूं? जैसा तुम चाहो, मैंने उत्तर दिया। संकोचग्रस्त हो और मैं हारमोनिका कुछ देर और बजाया, किंतु पहले जैसी बात नहीं रही। तब शर्माकर मैंने उसकी ओर चोरी से देखा। इरीन अतिशय सुंदर थी। उसका प्रत्येक हावभाव शालीन और शिष्ट था। घबराते हुए उसने अपने लंबे हल्के भूरे बाल अपने नाजुक चेहरे से हटाए और धीरे से बोली, मैं स्विट्जरलैंड के एक गांव की रहने वाली हूं और छुट्टियां लेकर आध्यात्मिक साथी की तलाश कर रही हूं। उसकी कत्थई आंखों में आंसू छलक आए। उसने अपनी यात्रा में मिले लोगों से प्राप्त निराशा का वर्णन किया जो सभी स्वार्थी सुखों के पीछे था। उसने मुझे बताया कि कैसे वो भगवान के समीप जाने के लिए उत्कंठित थी। तुम्हारे गीत से मैं जान गई हूं कि तुम भी ईश्वर की खोज में हो, कृपया कुछ कहो। हमने अपने जीवन और अभिलाषाओं के विषय में घंटों बातें की। आश्चर्य था कि हम में बहुत कुछ मिलता जुलता था। आंसुओं से भीगे उसके कोमल गाल चमक रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली जिससे उसका सुंदर रूप उभर उठा। मैं एक साथी के लिए प्रार्थना कर रही थी। जहां तुम जा रहे हो कृपया मुझे भी अपने साथ ले लो, मैंने आदर और विस्मय से उसका निवेदन सुना। निश्चल भाव से उसने कहा कि भगवान की खोज के मार्ग में हम अपने प्रेम को एक कर लें। कोमलता से देखते हुए उसने अंत में कहा, कृपया मेरी विनंती पर ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा, हाँ अवश्य। अगले दिन हमने विभिन्न संग्रहालयों और पार्कों में घूमते हुए एक दूसरे से अपने विचार बांटे। वो मुझे अब तक मिली अन्य युवतियों से पूर्णतः भिन्न लगी। मैं प्रफुल्लित हो उठा। शाम को जब मैं गैरी के साथ पहाड़ी पर बैठा ब्रेड खा रहा था, तभी एक अपरिचित लड़की पहाड़ी चढ़कर हमारे पास आई। उसने मेरा चेहरा गौर से देखा और मेरे हाथ में एक पत्र थमा दिया। जंगल में अकेले जाकर मैंने देखा कि उसे इरीन ने भेजा था। उसने लिखा था कि यदि मैं उसके निवेदन को स्वीकार नहीं करूंगा, तो उसके लिए मुझसे दोबारा मिलना बहुत दुखदायी होगा। यदि मुझे तुम्हारा संदेश नहीं मिला, उसने लिखा था, तो मैं समझ जाऊंगी वो रात मैंने जंगल में अकेले घूमते हुए बिताई। क्या यह मुझे अपनी आध्यात्मिक मार्ग से भटकाने का एक प्रलोभन है, या जीवन में एक ही बार आने वाला ऐसा अवसर जिससे मैं एक मृदु और सुंदर अप्सरा के साथ अपना जीवन बिता सकूंगा? मैं पूरे प्रसंग के अनोखेपन पर मनन करने लगा। इरीन से मिलने से कुछ ही घंटों पूर्व मुझे गिरजाघर में अपने जीवन का सर्वाधिक गहन आध्यात्मिक अनुभव हुआ था। मैंने स्वयं को भगवान के समक्ष समर्पित कर दिया था। यदि इरीन एक दिन पहले आती तो मैं उसे कैसे ठुकरा पाता? उसमें ये सब कुछ था जो मुझे एक लड़की से अपेक्षित था, और मैंने उसके प्रति गहरे आकर्षण और स्नेह का अनुभव किया था। मैं एक आदर्श जीवन साथी के रूप में उसकी कल्पना कर सकता था। मैं उसे अच्छी तरह से नहीं जानता था, किंतु मैं जानता था कि मेरी न उसके और मेरे दोनों के दिलों को तोड़ देगी। एक बार फिर मैंने स्वयं को एक दोराहे पर पाया। दो रास्ते मुझे आध्यात्मिकता की ओर लेकर जा सकते थे। एक रास्ता मुझे सुंदर संगीनी का सान्निध्य सुख दिला सकता था, और दूसरा भगवान पर समर्पित या जिस पर मुझे अकेले चलना था। उस रात मैं मनन और प्रार्थना करते हुए घूमता रहा। क्या वास्तव में मैं लौकिक प्रेम के इस अवसर को त्याग सकता हूं? सितारों से भरे आकाश को निहारते हुए मैं कैथोलिक संतों, तिब्बत के लामाओं और भारत के योगियों के विषय में सोचने लगा, जिन्होंने दिव्यता की खोज के आवेग में वैराग्य का जीवन चुना था। उन सभी ने पूर्ण समर्पण की पुकार के उत्तर में जीवन के सुखों का बलिदान कर दिया था। मैं उनके पदचिन्हों पर मैंने चलने के लिए तैयार था। मैं जानता था कि यह अत्यंत दुष्कर पथ है, किंतु भगवान की सहायता से मैंने प्रयास करने का निर्णय लिया। कम से कम इस समय के लिए ही सही। चांद की रोशनी के नीचे मेरी डायरी पर आंसू की एक बूंद आ गिरी और मैंने इरीन का नाम वहां से काट दिया। मैंने गैरी को कभी भी उसके विषय में नहीं बताया। अगर वो मेरी हारमोनिका के बोलों को समझ पाता तो शायद जान जाता। यद्यपि गर्मियां समाप्त हो रही थी और कॉलेज, परिवार एवं मित्रों के पास घर लौटने का हमारा समय निकट आ रहा था, फिर भी गैरी और मैं समझ गए कि अब हम वापस नहीं मुड़ सकते। दिव्यता की हमारी खोज अभी आरंभ ही हुई थी। कुछ दिनों पश्चात हम रोम पहुंचे। छात्रावास के पीछे घने जंगलों से भरी एक पहाड़ी थी, जिस पर गैरी और मैं तारों से चमचमाते आकाश के नीचे सोते। दिन में अधिकतर मैं अपने मित्र से अलग एकांत स्थान की खोज में घूमता। एक दिन मैंने एक पुराना मठ देखा और उसके छोटे से गिरजाघर में प्रवेश किया। जब मैं झुककर प्रार्थना कर रहा था तो एक वरिष्ठ साधु ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। क्या मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूं? उन्होंने पूछा। उनका कद ऊंचा था और थोड़े से घुटे सिर पर सफेद बाल थे। उन्होंने कंधे से पैरों तक भूरे रंग का जीर्ण शीर्ण किंतु स्वच्छ एक चोगा पहना था। उनकी कमर पर एक रस्सी बंधी थी और पैरों में चमड़े की घिसी हुई चप्पलें थी। उन्हें देखकर मेरे मन में आदर की भावना जागृत हो गई। धीरे से बोलते हुए मैंने कहा, फादर, यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो कृपया अपने आध्यात्मिक पथ के विषय में मुझे कुछ बताइए। वे मेरे साथ बेंच पर बैठ गए और सौम्यता से मुस्कुराए। मेरा लालन पालन एक वैभवशाली परिवार में हुआ। उन्होंने कोमल और गंभीर स्वर में कहना आरंभ किया, युवावस्था में मैं मेरे पास बहुत धन था, लेकिन अपने मित्रों की बुरी संगत में मैंने अनेक दुष्कर्म किए और महंगे कपड़ों, शराब और स्त्रियों के भोगविलास में डूबा रहा। वे एक क्षण के लिए रुके। उनकी आवाज पश्चाताप से भरी थी। जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो छुट्टियां मनाते हुए मेरे पूरे परिवार की समुद्री जहाज डूबने के कारण त्रासदीपूर्ण मृत्यु हो गई। शोकग्रस्त हो मैं अपने विलासी जीवन की व्यर्थता पर विचार करने लगा। उनकी मृत्यु ने मुझे जीवन की सार्थकता की खोज करने के लिए प्रेरित किया और वो खोज अनंतता मुझे एक फ्रांसिस्कन संत के पास ले आई। उनका शिष्य बनकर मैंने आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। अपने हाथों को वेदी की ओर उठाते हुए उनकी आंखें नम हो गई, आंखों में आंसू उमड़ आए। ईसा मसीहा के जीवन और शिक्षाओं में मैंने अपने पापों से मुक्त और शाश्वत जीवन के स्रोत की प्राप्ति की है। संत फ्रांसिस की भक्ति से मैं प्रेरित होकर मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। ये लगभग 50 वर्ष पुरानी बातें हैं। मैंने अपना सिर हल्का सा झुकाया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ जो मुझे बहुत व्याकुल बना रहा है? गिरजाघर में एक कार्यक्रम आरंभ होने वाला था और लोगों की भीड़ एकत्र हो रही थी। दया से भरी नीली आंखों से उन्होंने मेरी आंखों में देखा। उनके चेहरे पर पड़ी गहरी झुर्रियां वैराग्य के कठोर जीवन को दर्शा रही थी, किंतु उनकी आधी पोपली मुस्कान में एक अद्भुत आनंद था जो उनके जीवन का रहस्य था। समारोह शीघ्र ही आरंभ होने वाला है, तुम मेरे पीछे आओ। वे मुझे एक तंग गलियारे और पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतारकर घनघोर अंधेरे में ले आए। फिर उन्होंने एक लालटेन जलाई और हम लगभग 4 फुट चिड़ी एक भूमिगत सुरंग से आगे बढ़ने लगे। नीची छत वाली ये सुरंग प्राचीन पत्थरों से बनी थी और उसमें उमस भरी तीखी गंध आ रही थी। कर्कश चीखता हुआ एक चमगादड़ मेरे चेहरे के समीप से उड़ गया। धुंधलके में वे साधु दबी आवाज में बोले, मैं तुम्हें उस स्थान पर ले जा रहा हूं जो प्रार्थना करने के लिए मेरा प्रिय स्थान है। हमारी पदचापों के साथ साथ उनके शब्द भी पत्थरों से टकरा कर गूंजने लगे। हमने एक खाली कक्ष में प्रवेश किया। लालटेन की लपलपाती लौ लगभग उस 8 फुट लंबे एवं 8 फुट चौड़े कमरे को हल्की रोशनी से भर रही थी। उस कमरे में केवल लकड़ी का एक क्रूसिफिक्स और लकड़ी का एक बेंच था। मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा, क्या ये स्थान तुम्हारे लिए पर्याप्त रूप से शांत है? मैं वहां आकर बोला, फादर मैं धन्य हुआ। अपने भाग्य को सराहते हुए मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। हम बेंच पर बैठ गए। उन्होंने लालटेन को हम दोनों के बीच रख दिया। मैंने उन्हें अपने दिल की वे बातें बताई जो यूरोप यात्रा के समय मेरे मन में दबी पड़ी थी। मैं एक यहूदी परिवार से हूं और मैं अपने धर्म का आदर करता हूं। बचपन में यहूदी धर्म के प्रति अपने दादाजी की श्रद्धा देखकर मेरा हृदय बहुत प्रभावित हुआ। अपनी यात्रा के दौरान पवित्र टोरा और कबाला के अध्ययन से मैंने प्रेरणा और ज्ञान प्राप्त किया है, किंतु साथ ही ईसा मसीह का जीवन और शिक्षाएं मेरे हृदय को विदीर्ण कर देती हैं। उनके ज्ञान, करुणा और भगवान के प्रति प्रेम ने मुझे गहराई से प्रभावित किया है। मैं थोड़ा घबरा गया क्योंकि मैंने कभी भी इतनी स्वच्छंदता से इन विचारों को किसी से के समक्ष व्यक्त नहीं किया था, लेकिन उन साधुजी ने अपनी कोमल दृष्टि से मुझे आश्वासन दिया। मैंने आगे कहा, इतिहास हमें बताता है कि कैसे ईसाइयों ने यहूदियों का शोषण किया। कुछ ऐसे ईसाई हैं जो यहूदियों को ईसा मसीह का हत्यारा मानकर उनसे घृणा करते हैं, और मुझे स्वयं ऐसी धारणाओं का शिकार होना पड़ा है। कुछ ऐसे यहूदी भी हैं जो ईसाइयों को हीन मानते हैं और ईसा मसीह को अधिक महत्व नहीं देते। अपने साथ बीती घटनाओं की स्मृतियों ने मेरी वाणी को अवरुद्ध कर दिया। लालटेन की मंद लौ में मैं झांकते हुए मैंने उनसे उत्तर देने के लिए प्रार्थना की। एक ही भगवान से प्रेम करने वाले लोगों में इतनी कलह क्यों है? क्या ईसा मसीह के प्रति हृदय से आदर व्यक्त करके मैं अपने यहूदी वंश के साथ विश्वासघात कर रहा हूं? उन वृद्ध साधु ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। कुछ बोलने से पहले उन्होंने स्वर्ग की ओर ऊपर देखा और मौन होकर आंखें मूंद ली। एक क्षण पश्चात तो उन्होंने आंखें खोली। मेरे बच्चे, भगवान एक है। सभी धर्म हमें उनसे प्रेम करना और उनकी आज्ञा पालन करने का संदेश देते हैं। खोखली श्रद्धा, अहंकार या राजनीति के कारण लोग बाहरी अंतरों को लेकर लड़ाई करते रहते हैं। 50 वर्ष की अपनी ध्यान साधना, प्रार्थनाओं और दान के पश्चात मैंने जाना है कि भगवान का प्रेम भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होता है। विभिन्न धार्मिक पंथों में ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन भगवान के प्रेम एवं मानवता के कल्याण के लिए न्योछावर कर दिया है। गहन विचारों में डूबे अपनी ठुड्डी को मलते हुए उनकी आवाज़ भर्रा उठी, मैं ईसा मसीहा को ईश्वर पुत्र और अपना संरक्षक मानता हूँ। शायद ये भगवान की इच्छा है कि वे श्रद्धालु यहूदियों को मुझसे भिन्न श्रद्धा देकर प्रेरित करते हैं। वे बताने लगे कि मूसा और पैगंबरों ने सिखलाया है कि हम अपने मन, हृदय और आत्मा से भगवान को प्रेम करें। ईसा मसीह ने भी यही सिखलाया था कि भगवान के आदेशों को बदलने नहीं अपितु उन्हें पूरा करने आए थे। तो फिर घृणा और लड़ाई किस लिए? वे बोलते रहे, भगवान का धाम ऐसा लक्ष्य है जिसे हम सभी पाना चाहते हैं, किंतु वहां पहुंचने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। केवल संकीर्ण मानसिकता वाले लोग ही मतभेद उत्पन्न करते हैं। उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा और स्नेहपूर्वक मेरे सिर को थपथपाया। घबराओ मत बेटा, तुम सच्चे हो, भगवान तुम्हें मार्ग दिखलाएंगे। उनके शब्दों ने मेरे हृदय को छू लिया। एक दिन गैरी और मैं एक मठ में आए जहाँ के साधु ऐसे कब्रिस्तान में ध्यान साधना करते थे जो उनके पूर्वजों के कंकालों और हड्डियों से भरा था। वहाँ कुछ कमरों में सैकड़ों मानव खोपड़ियों और हड्डियों का ऊंचा ढेर लगा था। कुछ अन्य कमरों में हड्डियों द्वारा सुंदरता से फूलों के डिज़ाइन, फर्नीचर और फानूस बने थे। हमने उधर बैठ के बैठे एक वृद्ध साधु से इन सब का अर्थ समझाने का अनुरोध किया। यहाँ पर हम शरीर और उससे जुड़ी आसक्तियों की नश्वरता पर ध्यान करते हैं। उन्होंने कहा, यह हमें इस काया द्वारा प्रस्तावित प्रलोभनों को पार कर भगवान के धाम का आश्रय लेने में सहायता करता है। हम ध्यान से सुनने लगे। कब्रिस्तान की ओर अंदर एक कमरे में साधुओं के वस्त्र पहने कंकालों का एक समूह था और वे एक तख्ती की ओर संकेत कर रहे थे जिस पर लिखा था, जैसे तुम अभी हो कभी हम भी वैसे ही थे। जैसे अभी हम हैं वैसे तुम हो जाओगे। इन आध्यात्मिक अनुभवों के बावजूद भी भौतिक जगत मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा। एक दोपहर गैरी और मैं रोम में घूमते हुए पुस्तकों की एक दुकान पर पहुंचे। हम अक्सर पुस्तकों की दुकानों में जाते थे और पुस्तकें खोलकर उनमें प्रेरणादायक प्रसंग ढूंढते। आज एक पुस्तक ने मेरा ध्यान खींच लिया, हाउ टू प्ले ब्लूज हारमोनिका, ब्लूज हारमोनिका बजाना कैसे सीखें। पन्ने उलटते हुए मैंने उसमें महान संगीतज्ञों की शैली से संबंधित पाठ देखे। उसमें मेरे सभी प्रिय गायकों जैसे सोनी बॉय विलियमसन, लिटिल वॉल्टर, हाउलिंग उल्फ, जिमी रीड, स्लिम हार्पो, सोनी टेरी, जूनियर वेल्स, जॉन मेयॉल, पॉल बटरफील्ड एवं अन्य अनेक लोगों के गीत संचित थे। यात्रों में मैंने अपने साथ रखने के लिए ये एक आदर्श निर्देशिका थी, किंतु इसे खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। क्या मुझे ऐसी पुस्तक पुनः कभी मिलेगी, मैंने सोचा। शायद नहीं। मेरा शैतानी स्वभाव मुझ पर हावी हो गया। सावधानीपूर्वक चारों ओर देखते हुए मैंने वो पुस्तक अपनी जैकेट में छिपा ली और बाहर आ चला आया। जब हम जंगल में अपने पड़ाव पर आए तो मैंने गैरी को अपना खजाना दिखाया। उसने मुस्कुराकर अपनी सहमति दी। कुछ दिनों पश्चात हम बसालिका ऑफ सेंट पीटर पहुंचे। उसी दिन पोप ने वहां प्रवचन दिया था। घंटों रोम में घूमने के बाद हम एक सुंदर गिरजाघर में पहुंचे। वहां लकड़ी के भारी बेंच थे जिन पर वर्षों पूर्व की गई सुंदर नक्काशी थी। मोमबत्ती के मध्यम प्रकाश से आलोकित विशाल गर्भगृह में बेंच पर बैठकर हमने एक घंटे तक कृतज्ञ हृदय से ध्यान और प्रार्थनाएं की। फिर वापस हिचहाइक करते हुए हम रोम के एक भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर पहुंचे और तब गैरी ने गर्व से लकड़ी पर बारीक नक्काशी वाला ईसा मसीह का एक क्रूसिफिक्स दिखाया। मैंने उसे अपने हाथों में लिया और उसकी सुंदरता पर विस्मित हो गया। ये तुम्हें कहाँ से मिला, मैंने पूछा। गिरिजाघर के कन्फेशन बूथ से, गैरी ने प्रफुल्लित होते हुए कहा। क्या, मैंने उसे वापस थमाते हुए कहा, तुमने इसे भगवान के घर से चुराया? तुम ये कैसे कर सकते हो, शर्म आती है मुझे तुम पर। गैरी की आंखों में गुस्सा उतर आया। मंक, तुम कौन होते हो मुझे ये प्रवचन सुनाने वाले? क्या तुमने वो हारमोनिका की पुस्तक नहीं चुराई थी? ढोंगी मत बनो। वो सही कह रहा था। मैं लज्जित और पराजित महसूस करने लगा। मुझे उसकी निंदा करने का कोई अधिकार नहीं था, किंतु मुझे अपने मन की बात कहनी थी। हाँ, मैंने चोरी की, किंतु एक पैसा बनाने वाली दुकान से, किसी धार्मिक स्थान से नहीं। गैरी का गुस्सा अब सातवें आसमान पर पहुंच गया। ट्रैफिक के शोर से भी बड़ी बड़ी और चढ़ी आवाज में चिल्लाते हुए उसने तर्क दिया। चर्च दुनिया के धन कमाने वाला सबसे बड़े व्यापारों में से एक है। वे अरबों डॉलर में कमाते हैं, जबकि हो सकता है कि वो पुस्तकों की दुकान एक धर्मपरायण व्यक्ति चलाता हो जो मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता है। हमें झगड़ता देखकर आसपास चलने वाले राहगीरों की भीड़ लग गई और कारें रोककर लोग तमाशा देखने लगे। ट्रैफिक के शोरगुल के बीच बोलने के लिए मुझे जोर लगाना पड़ा। शायद तुम सही हो, किंतु फिर भी हमने उस गिरजाघर में भगवान की पूजा की थी। सब जगह छोड़कर तुम्हें वहीं से चोरी करनी थी। मैं ये सहन नहीं कर सकता भाई, कृपया इसे लौटा दो, कम से कम मेरे लिए। गैरी का गुस्सा पिघल गया। उसके चेहरे पर शांत मुस्कुराहट खिल उठी। उसने मुझे गले से लगा लिया और क्षमा मांगते हुए क्रॉस वापस करने के लिए सहमत हो गया। मुझे भी क्षमा करना गैरी, मैं जानता हूं मैं गलत हूं, किंतु बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोनों हिचहाइक करके वापस चर्च गए और वह चुराया हुआ क्रूसिफिक्स वहां लौटा दिया। जब हम वापस जंगल में अपने पड़ाव पर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। हम सुबह के झगड़े पर हंसने लगे, लेकिन सहमत हो गए कि इस घटना ने हमारी मित्रता को और गहरा बना किया है तथा एक दूसरे के प्रति अपनी निष्ठा को भी सिद्ध किया है। अपने स्लीपिंग बैग में लेटे हुए मैं सितारों को देखने लगा। मेरे मन में झुंझलाहट पैदा होने लगी। मैं एक ढोंगी हूं, क्या वे ढोंगी ही नहीं थे जिन्होंने ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया था? कथनी और करनी में भेद रखना कितना बड़ा कपट है। गैरी ने मानो मेरा मन पढ़ते हुए कहा, मंक कृपया इस हारमोनिका की पुस्तक को न लौटाना, सभी को तुम्हारे द्वारा बजाए नए गीत बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने वो पुस्तक तब तक अपने पास रखी जब तक उससे जितना सीखना संभव था उतना सीख नहीं लिया। रोम छोड़ने से कुछ दिन पहले मैं वापस उस दुकान पर गया और उस पुस्तक को वहीं रख दिया जहां से निकाली थी। अन्य स्थानों के समान रोम में भी मुझे एक नदी के तट पर आश्रय मिला। टेबर नदी को निहारते हुए मैं सोचने लगा कि कैसे ये नदी रोमन साम्राज्य के उत्थान और पतन की साक्षी रही है, आज भी ये निरंतर बहती जा रही है। अनेक पीढ़ियां और सभ्यताएं विनष्ट हो गईं और रोम के भव्य भवन खंडहर बन गए, किंतु इस दौरान भी टेबर नदी उस ज्ञान को लेकर निरंतर बह रही है जिसे पाने के लिए मैं लालायित था। उसके प्रवाह को देखते हुए मैं अपने उन उल्लास एवं विषाद भरे क्षणों और परीक्षाओं पर विचार करने लगा जिनसे होकर मैं इटली में गुजरा था। मैंने अपने सहायक सैनिक जिम को लुटते हुए देखा। मैंने उस अमूल्य आशीर्वाद का स्मरण किया जो मुझे सेंटा मैरिया डिल फियोर कैथेड्रल में प्राप्त हुआ था। मेरे विचारों की धारा तब इरीन की ओर मुड़ी। वो मृदुल अप्सरा जैसी जिसे मैंने अपने मार्ग की एक बाधा समझ लिया। टेबर में कलनाद में मुझे फ्रांसिस्कन संत के ज्ञान भरे वे शब्द सुनाई दिए जो उन्होंने उस भूमिगत अंधेरे कक्ष में कहे थे। फिर लज्जा से मुझे अपनी चोरी का प्रसंग और फिर ढोंगी के समान अपने सर्वप्रिय मित्र को उसकी चोरी के लिए डांटना स्मरण हो आया। इन सब से गुजरते हुए मैंने अनुभव किया कि भगवान का दिव्य हाथ मुझे जीवन की अमूल्य शिक्षाओं की प्राप्ति की ओर ले जा रहा था। बहते जल को देखते देखते मैं संत फ्रांसिस के जीवन पर विचार करने लगा। युवावस्था में उन्हें कोढ़ियों को देखने से ही घृणा होती थी, किंतु जब भगवान की कृपा ने उन्हें छुआ तो उन्होंने सहानुभूति और सेवाभाव से एक कोढ़ी का हाथ चूम लिया। मेरे मन में असीसी जाने की तीव्र इच्छा जाग उठी। असीसी मतलब वो स्थान जहां संत फ्रांसिस रहते थे। गैरी से कुछ दिन अलग होकर मैं वहां गया। वहां मैंने संत फ्रांसिस के जीवन की कथाएं उन्हीं स्थानों पर पढ़ी जहां वे घटी थी। एक धनी व्यापारी के पुत्र फ्रांसिस युवावस्था में एक सैनिक थे, किंतु सन 1205 में जब वे कॉन्वेंट ऑफ सेंट डेमियोनो चर्च में प्रार्थना कर रहे थे तो चर्च के क्रूसिफिक्स से ईसा मसीह ने उन्हें खंडहर बन चुके एक प्राचीन गिरजाघर का जीर्णोद्धार करने का निर्देश दिया। वो हृदय परिवर्तन का एक क्षण था। संत फ्रांसिस ने स्वेच्छा से निर्धनता, नम्रता और भक्ति के जीवन को अंगीकार कर उनके अनुयायियों को आकर्षित किया। सेंट डेमियानो में मैंने संत फ्रांसिस के परिवर्तन पर मनन करते हुए अनेक दिन बिताए। उनके बचपन के घर जाकर मैंने वो कक्ष देखा जहां उनके पिता ने उन्हें इस भय से कैद करके रखा था कि फ्रांसिस सब कुछ छोड़कर चले न जाए, किंतु वे अपनी मां को बहला फुसला कर वहां से निकल भागे। मैंने कैथेड्रल ऑफ एंजल्स भी देखा जहां उन्होंने अपना आश्रम आरंभ किया और वही अपनी अंतिम सांसें ली। अपने हृदय में संत फ्रांसिस के वैराग्य, करुणा और आध्यात्मिक प्रेम के आनंद की प्रेरणा लिए मैं फिर गैरी के पास वापस रोम लौट आया। रोम से हम हिचहाइक करते हुए नेपल्स पहुंचे और वहां से पोम्पेड के ऐतिहासिक शहर में। एक समय पोम्पेड एक समृद्ध शहर था जो माउंट वेस्यूवियस ज्वालामुखी के लावे के नीचे दबकर एक ही रात में खाक बन गया। सदियों पश्चात जमे हुए लावे के बीच से उस प्राचीन सभ्यता के अवशेषों को खोदा गया जिन्हें देखकर हम विस्मित हो गए। लावे में जलकर राख हो चुके मानव शरीरों के सांचे बन गए थे। पशु, भवन, सड़कें और सैकड़ों कृतियां पाषाणीय लावे में संरक्षित थी। मैं विचारों में खो गया। हम पोम्पई की इस त्रासदी से क्या सीख सकते हैं? विपत्ति किसी भी क्षण किसी भी के ऊपर आ सकती है। इसे नजरअंदाज कर अपनी निश्चिंतता में हम भौतिक वस्तुओं की क्षणभंगुरता को समझ नहीं पाते। मुझे उस भयंकर ब्यूबोनिक प्लेग का स्मरण हो आया जिसने यूरोप का सफाया कर दिया था। वो परमाणु बम जिसने हिरोशिमा को धूल में मिला दिया था और वे भूकंप एवं अग्निकांड जिन्होंने अमेरिका के अनेक नगरों को नष्ट कर दिया था। मानवता का इतिहास ऐसी अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है जिनमें प्रकृति की शक्तियों ने हमसे सब कुछ छीन लिया। फिर ज्ञान के शाश्वत रत्न को प्राप्त करने का प्रयास क्यों टाला जाए? अभी भी समय है। जैसे वेस्युवियस ज्वालामुखी ने फटकर संपूर्ण सभ्यता को राख कर दिया था, वैसे ही मेरे हृदय में आध्यात्मिकता के पथ पर पूर्ण समर्पण करने की भावना फूट पड़ी और अपने अतीत की राख के ढेर में सब कुछ छोड़कर मैं आगे बढ़ गया। यहां तीसरा अध्याय समाप्त होता है।